मेहरान बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो भाई। तुम जाओ, बस खत्म हो गया, अब मैं देख लूंगा खुद।
नहीं, कहाँ जाऊंगा, बस खत्म
हो गया ना,
बाकी भी ले आऊंगा।
मैं तकल्लुफ थोड़ी कर रहा
हूँ।
हेलो, सलाम अलैकुम। जी जी आप कैसे हैं? जी अबू ने बता दिया था। फरहादी साहब एक मेहरबानी कीजिए, आप उनको शुक्री साहब का एड्रेस दे दें। जी जी कागजात वहीं पर हैं। जी शुक्री साहब खुद वो नहीं, आप जानते हैं मैं मसरूफ़ हूँ, बहुत परेशान हूँ और कीमत भी मैंने बहुत कम रखी है, आप जानते हैं। जी 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 पहले बात कर लेने दीजिए, देखते क्या था है। मैं शाम को ज़रूर एक चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
कौन था, कुछ हुआ है क्या?
हाँ जी फरहादी थे, अबू ने वर्कशॉप उनके सपोर्ट की थी, एक गाहक मिल चुका है लेकिन रियायत मांग रहे हैं।
कितना?
100 मिलियन।
100 मिलियन? छोड़िए मेहदी भाई, हम अभी भी बाजार की कीमत से बहुत कम पर बेच रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 100 मिलियन कम करके देना चाह रहे हैं?
नहीं अभी कबूल तो नहीं किया मैंने, अलबत्ता फरहादी साहब बता रहे हैं कि पैसा पूरा कैश है।
पहचानते हैं उन्हें?
किसको?
उसी को जो वर्कशॉप खरीदना चाहता है।
नहीं नहीं जानता।
उसे कहो हम उससे कम पर नहीं बेच सकते, अगर इसी कीमत पर चाहे तो आगे आए। मेहदी भाई मेरे एक दोस्त की एजेंसी है, मैंने ये केस उसके हवाले किया है, फोन करके कहो कि हम इससे कम पे नहीं बेचेंगे, बात खत्म।
मेहरान प्रॉपर्टी की हालत काफ़ी ख़राब है, पूरी तरह मंदी है, डर रहा हूँ कहीं ग्राहक ना मिले बाद में। फिर
क्यों नहीं भाई, वर्कशॉप की लोकेशन अच्छी है, बगैर किसी मुजायम के 1 महीने के अंदर अंदर बिक जाएगी। क्या हुआ है?
नहीं मालूम।
कुछ हो गया है क्या?
पता नहीं। दादाजान दादाजान आप रो रहे हैं, अगर आप इस तरह रोते रहेंगे तो हम इस तरह फिर नहीं आएंगे।
हेलो क्या हुआ, मिल गया? अरे जल्दी करो यार, अब्बू ने वर्कशॉप के लिए कहाँ ढूंढ लिया है। हाँ खुदा हाफिज।
क्या हुआ, सामान ले आए?
जी हाँ। दादा जान आप राजी होंगे तभी मैं इस घर में आऊंगा।
मैं क्यों राजी नहीं होऊंगा, तुमने यहां आने पर राजी होके इतनी बड़ी मेहरबानी की और हमारे पास आए। तुम्हारी फूफू भी अकेली हैं, दो बूढ़े अपराध की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई हुई है, اپنی تنہائی کی وجہ سے ہی سہی خود کو مصروف رکھتی ہے۔
اور خدا آپ تو ناراض نہیں ہیں نا؟
کس بات پر؟ اس بات پر کہ خدا نے مجھے ایک مہربان پوتا دیا ہے، اس بات پر کہ میرا پوتا پرانی تلخیوں کو فراموش کرنا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے، اس پر ناراض ہو جاؤں؟ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ مجھے دکھی کر دیتی ہیں، مجھے بہت دکھ دیتی ہیں۔ کاش کہ تمہارے ابو اور چچا میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ تم جانتے ہو ماں باپ کے لیے سب سے سخت اور دردناک بات اپنے بچے کی موت ہوتی ہے۔ تمہارا باپ اور چچا ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا پوچھتے تک نہیں۔ یہ بھی بچے کی موت کی طرح دردناک ہے۔
اندر آ سکتا ہوں؟
یہ اب مہدی کا گھر ہے، تمہیں اس سے اجازت لینی پڑے گی۔
یا اللہ، السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟
میں صدقے جاؤں بے قربان۔
کیسے ہیں آپ؟
میری جان، میرے بیٹے، اپنے بھائی کی قدر جانو اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔
جی
بھائی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔
جی بالکل۔ بھائی جان سب کچھ اندر لے آئے، گاڑی کے پیسے بھی دے دیے، مجھ سے کوئی اور کام تو نہیں؟
مجھے کیوں نہیں بتایا؟
کوئی بڑی بات نہیں تھی نا۔
کتنا کرایہ لیا؟
ارے اب چھوڑیے بھائی،
بتاؤ نا کتنے لیے۔
رہنے دیں، کوئی بات نہیں، بعد میں بتا دیں گے۔ دادا جان آپ کو ہم سے کوئی کام نہیں؟
میں سب کے جاؤں۔ جاؤ جاؤ بیٹا،
سلامت رہیے،
سلامت رہو۔
ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں۔ اچھا
لیکن جلدی جلدی آیا کرنا۔
ہاں بالکل، ضرور ضرور، خدا حافظ، اب چلتے ہیں۔
معاف کیجیے گا دادا جان۔ مہران کتنے پیسے لیے؟
ارے بھائی چھوڑیے
نا، نہیں میری قسم بتاؤ،
کچھ نہیں لیے، کچھ نہیں لیے اس نے۔
دیکھو فی الحال امی کو بات بتانا کچھ بھی
نہیں۔ ہم کیوں، امی سے کیوں بتاؤں گا میں؟
یہ نفرت ہی چھوڑے میرے بیٹے۔
میں ذرا یہاں کو پہلے سیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد خود ہی جا کے بتا دوں گا پوری بات۔
جی ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
خدا حافظ دادا جان۔
یا اللہ اس فیملی کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھنا، ایک ساتھ رکھنا۔ یا اللہ، میرے بیٹے تم اور مہران حمید اور محسن جیسے ہو۔ حمید مہران کی طرح تھا، بے قرار، پرجوش، لیکن محسن پرسکون اور عاقل، ہر مشکل کو مینجمنٹ، صحیح احساس اور خدا پر توکل کے ذریعے حل کرتا تھا۔
دادا جان میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی آ کے اس کمرے میں رہے۔ جانتا ہوں کہ ابھی تک حمید چچا کی یاد میں آپ نے کمرے کی سیٹنگ تک چینج نہیں کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری خاطر اپنی اس چاہت کو بھلا دیں۔
ایسی باتیں نہیں کرو۔ میری آرزو ہے کہ تم سب اس گھر میں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں دیکھ کر لطف اٹھاؤں۔ بیٹا میرے، میں تمہیں حمید سے کم نہیں چاہتا۔ تم نے اس گھر کے لیے ایک ناحق تھپڑ کھایا ہے، اس لیے اس گھر پر ہم سب سے زیادہ حق تمہارا ہے۔
اتنا بھی ناحق نہیں تھا دادا جان، میں خود بھی اس طرح سے شریک جرم تھا۔
سوریا کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اسی لیے میں اس بات پر راضی ہوا کہ تمہارے ابو یہاں سے چلے جائیں۔ سوریا سے بات نہیں ہو سکتی تھی، وہ صرف اپنی چلاتی تھی۔ میں نے سوچا بہترین فیصلہ کیا ہے میں نے، لیکن تمہاری ماں کو اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں نے سوچا چند سال بعد مہران بڑا ہو جائے گا اور سوریا کے سامنے ڈٹ جائے گا، اس وقت کیا کریں گے؟ سوچا ایسا نہیں ہی چلے گا، کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا۔ سوریا کو اس کے گھر سے نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا اور میں اگر اس سے کچھ کہتا تو یہی سمجھتی کہ میں اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی لیے اس بات پر راضی ہوا کہ آپ لوگ گھر سے چلے جائیں، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر انگارے رکھ دیے ہوں۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟
دادا جان میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گا؟
کیوں؟ کیونکہ بچوں کو جب کوئی بڑا اذیت کرتا ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے تو وہ انہیں نہیں بھلا پاتے۔ میں آپ کو اذیت پہنچانا نہیں چاہتا تھا، تمہارے والد کو روکا لیکن وہ غصے میں تھا، اس نے تمہیں سزا دی اور میں اسے نہیں روک سکا۔
دادا جان میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، کبھی بھی، صرف اس وقت جواب دکھی۔
میران چلا گیا؟
جی دادی جان چلا گیا۔
کاش کھانے پر رک جاتا وہ۔
تم بھی مان گئے؟
ہاں مان گیا، کیوں نہ مانتا، شروط جو انہوں نے رکھی غیر منطقی نہیں تھیں، وہی چیزیں کہیں جو میں خود بھی چاہتا تھا۔ تم ایسی بات کرو جو منطقی ہونا۔
تم آئندہ ایک سال میں گھر خرید لو گے؟
ہاں نازنین کیوں نہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی راکٹ سائنس سیکھنے کو تھوڑی کہا۔
ٹھیک ہے
رکو میں پہنچاتا ہوں۔
تم نے میرے ابو سے وعدہ کیا ہے نا کہ جب تک تمام شرطیں پوری نہ کر لو مجھ سے نہیں ملو گے؟
کیوں نہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں یونیورسٹی میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔
تو تم اب یونیورسٹی کہاں آتے ہو؟ جانتے ہو انہیں نہیں پتا تم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، اگر ان سے کہتی تو ان میں سے کوئی بھی شرط نہ رکھتے، بس کہتے ہی پڑھو۔
تو میں بھی نہیں مانتا اور کہتا کہ میرا ٹارگیٹ پڑھائی نہیں ہے بلکہ پیسے کمانا ہے۔
تم خواب و خیالوں میں ہی رہنا بس، تم 2 سال سے خواب و خیالوں میں ہی جی رہے ہو۔ یار خیالوں کی دنیا سے نکلو، حقیقی زندگی میں کوئی بھی ایک دن میں مالدار نہیں بن سکتا۔
نازنین اس شہر میں اتنے مالدار لوگ رہ رہے ہیں، وہ کیا سب خواب و خیال میں رہتے ہیں؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر جو چیز تمہارے باپ نے مانگی ہے حاصل کر لوں، وعدہ۔
خدا حافظ۔
ہیلو،
السلام علیکم، کہاں ہو؟
کیوں؟
تیرے رنگ میں ماریان کے ساتھ طے ہو گیا۔
کب کے لیے؟
کل شام کو۔
آج کیوں نہیں؟
آج اسے کچھ کام تھا، نہیں آ سکے گا۔
ارے اس گھٹیا آدمی کو بھی ہمیشہ اس وقت کام ہوتا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کو چھوڑو، مہدی ورک شاپ کو بیچ کے ہماری پلاننگ خراب کر دے۔
بیچ دیا تو بیچ دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اٹھو ابھی اسے فون کرو اور کہو کہ گاہک آیا ہے۔
اچھا اگر نہ ہوا اور کام نہیں بنا تو کیا ہوگا؟ اگر مہماری یا نہ مانے شاید وہ ہماری پلاننگ میں حصہ نہ لینا چاہے اور نہیں چاہے کہ ایک گاہک کا کردار ادا کرے۔
مان جائے گا، میرے پاس اس کے لیے ایک اچھی پیشکش ہے، وہ نہیں نہیں کہہ سکے گا۔
دیکھو آج ہی کے لیے میٹنگ فکس کر دو۔
دیکھتا ہوں۔
خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
کیا تمہیں کام پہ نہیں جانا ہے؟
کل صبح سے جاؤں گی۔
امی ابو جان یہ کیا کر رہی ہیں؟ ٹک 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 کی آواز سے میرا سر دکھنے لگا۔
کیا کروں، مہدی کہتا ہے انہیں مصروف رہنے دیں۔
گھر میں
فی الحال تو اور کوئی جگہ ہے نہیں، اور کسی کو ہماری فکر بھی نہیں ہے۔
مہدی سے کہے کہ گھر میں نہیں ہو سکتا، اس کی آواز سے ہم پاگل ہو جائیں گے۔
دیکھ تو رہی ہو، کل سے ایسا غائب ہوا ہے جیسے اسے ماں باپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب سے ان کو ہما ملی ہے نا، پتہ نہیں اسے کیا پٹی پڑھا دی ہے کہ گھر ہی نہیں آتا، رات کو بھی نہیں آتا۔
ارے آپ یہ بلا وجہ انہیں ستا رہی ہیں، پرستوں کا دل نہیں چاہتا کہ یہاں پر رہے۔
کیوں نہیں چاہے گی؟ دیکھ تو رہی ہو کہ اس لڑکے کے کیا حالات ہیں، زندگی ہمیشہ انسان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتی۔
بہرحال آپ خواہ مخواہ سارا مسئلہ ہما پھوپھی پر ڈال رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے بیچاری نے؟
تم ابھی ان کو صحیح طور سے نہیں جانتی محترمہ۔
مجھ بیچاری نے کب ان کو دیکھا جو ان کو پہچانوں گی میں؟
میں جو اتنے سال ان کے ساتھ ایک گھر میں رہی ہوں، ان کے ساتھ میرا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، انہوں نے مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ یہ لوگ برا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، یاد رکھنا۔ پرستو جب کچھ عرصہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گی نا تو وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچ جائے گی، دیکھ لینا۔
کیا بتاؤں، مجھے تو اتنی نفرت اور کینہ کی وجہ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ لوگوں کے رشتہ دار اور فیملی والے کچھ بھی نہیں ہوتے، سب ان کا شو آف کرتے رہتے ہیں۔ یہی روحی صاحب، इनकी बेटी स्वीडन में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है। जब भी उनके कमरे में जाते हैं कहते हैं मेरी बेटी ऐसी है, ऐसी हाई एजुकेटेड है, ऐसी है वैसी है। और हमारी फूफी तो डॉक्टर है, हमें ये भी नहीं पता कि उनका क्लिनिक कहाँ पे है।
पता होता तब भी तुम्हारे लिए वो कुछ ना करती, यकीन मानो।
आप कहाँ से जानती हैं? हम लोग ने तो अपने आप को उनसे इतना दूर कर दिया कि अगर कुछ करना भी चाहते तो नहीं कर सकते।
तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। दरवाजा खुला है, जाओ, जाना हो तो जाओ, उनके हाथ पैर पर पड़ो, शायद तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। किसी ने तुम्हें रोका नहीं है।
ओहो,
फिर क्या हुआ है?
बच्चों के लिए कुछ भी कर डालो ना, सब बेकार होता है।
अरे अम्मी जान, आपने एक बात की, मैंने भी आपका जवाब दिया, नाराजगी की कौन सी बात है यहाँ पर?
तुमने क्या कहा महनोश?
कुछ नहीं, कहती है आप मेरी फूफी को मुझसे प्यार करने क्यों नहीं देती। आप ही बताएं मोहसिन, क्या हम खुद उस घर से निकलना चाहते थे? सुरैया ने सारी साजिश तैयार की और सब लोग उसके सामने झुक गए।
इन सब बातों का तुमसे क्या ताल्लुक? क्या उसने हमें उस घर से जाने को कहा?
वो भी खड़ी रही, ठुक ठुक देखती रही और एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला।
उससे क्या ताल्लुक था? क्या ये उसका घर था जो कुछ कहती? उस जमाने में हुमा पढ़ाई में मशगूल थी।
तुम्हारी माँ का घर भी तो था, वो क्यों कुछ नहीं बोली? नहीं कहा कि मेरा बेटा कहाँ जाएगा? उसके पास तो घर भी नहीं है। आप भूल गए सारी बातें, लेकिन मैं सारी उम्र नहीं भूल सकती।
मत भूलो, इन्हें भी बताओ, इनको भी जानने दो कि उनके दादा दादी कितने खराब लोग हैं। परस्तु भी अगर हुमा के पास गई है, शायद ये सोच के कि मेहंदी का बच्चा सुलह सफाई का जरिया बनेगा। और तुम ये नफरतें भूल जाओ, तुम नहीं भूलना चाहती।
अगर तुमसे सुरैया की नफरत खत्म होनी थी तो हमारी शादी के बाद खत्म हो जाती। बेचारी परस्तु ये समझ रही है कि वो लोग इंसान
हैं। अम्मी जान,
क्या अम्मी जान लगा रखी है? तुम्हारे अब्बू जानते हैं। मोहसिन, क्या आप वाकई भूल गए हैं? सुरैया हमारी शादी के लिए हत्या कमरे से भी बाहर नहीं आई, जैसे उसके दुश्मन की शादी हुई हो, याद है आपको?
वाह वाह, अपने भाई के ऊपर कुर्बान जाओ, अपने खूबसूरत प्यारे भाई के ऊपर। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे भाई, बहुत वाह वाह, तालियां बजाओ सब लोग।
खुश शांति आपके कदम हमारे सरांगों पर खुश शांति। मुराद मियां, भेड़ को पानी देने के बाद सेवा करना।
तैयार है।
चाहे सुरैया को लेकर आइए जरा।
छोड़ो इन बातों को, दुल्हन के पांव के सामने जवा करो मुराद।
जी सर, क्यों नहीं सर, आपको पर
मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
इनकी सलामती के लिए बुलंद सलावा।
इब्तिदा थी, हर रोज लड़ा करती थी, रोज आना। अलबत्ता मेरे साथ बुरी नहीं थी, तुम्हारे अब्बू के साथ बुरी थी। आपको याद है अमित की शादी में खुशी से कैसे उछल रही थी? लेकिन तुम्हारे अब्बू को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
लेकिन किस लिए?
बूढ़ी थी बेटा, एक शिकस्त खुर्दा बूढ़ी औरत, बच्चे भी नहीं थे, शौहर भी उसके ऊपर सौतन ले आया था, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई थी। उसके कामों की कोई माकूल वजह नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसकी बदअखलाकियों का बुरा नहीं माना। लेकिन तुम्हारी माँ ने बात का बतंगड़ बना दिया।
बेचारी सुरैया पुप्पी, अलबत्ता सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, जैसे ही देखते हैं कि उनकी बीवी से बच्चे नहीं है, जाके दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर मर्द में मसला हो तो औरतें सारी जिंदगी उनके साथ जिंदगी करती हैं और कुछ भी नहीं कहती हैं।
शौहर के भी बच्चे नहीं हुए, आखिर में उन्होंने किसी और के बच्चे को लेके पाला था।
बेचारे।
बेचारा कहने की बात नहीं है, बेटा जो भी बुरा करता है बुरा देखता है। ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरा जी नहीं चाहता कि दोबारा इस घर में आना जाना करें वो लोग।
अम्मी जान, ये अब्बू का घर है और हमारा घर भी तो है ना।
ठीक है, जब तुम्हारा जी चाहे उन लोगों को बुलाने का तो मुझे पहले से बता दो, मैं चली जाऊंगी।
अब इतना ड्रामा तो मत करें ना।
मत डरो, वो यहाँ नहीं आएंगे। मेहंदी से कह दिया है कि एक अच्छी जगह किराए पर ले ले। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर मैदानी जंग बना रहे।
अच्छी बात है, कम अज कम मेरे लिए बहुत अच्छा है। अपने घर के बारे में मालूम रहेगा ना।
ये लीजिए।
शुक्रिया।
नौशजान,
मैं ये काम नहीं कर सकता।
अरे बैठे में मारियान साहब, खुदा के लिए ये क्या कह रहे हैं आप? मकसद ये है कि हम कोई राह ढूंढ सकें।
मैंने पहले से वादा किया है कि लोन लेने में आपकी मदद करूंगा। अगर ऐसा करना है तो इसी के जरिए अपने लिए क्यों लोन ना लूं?
यानी आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? छोटी सी
क्या, बगैर रकम के चेक देना छोटी सी मदद होती है?
सर आप चेक मत दीजिएगा, हम खुद दे देंगे।
ये सच कह रहे हैं आप? सिर्फ एक गाहक को अनुमान से आगे आए, चेक का इंतजाम हम करेंगे।
अरे चेक तो गाहक को देना पड़ता है ना।
इस मसले का हम कोई निकाल लेंगे, हम में से एक आपके शराकतदार की हैसियत से।
मेहदी में जानता है, नहीं हो सकता।
अरे आप मेहदी को दे देना, हम इत्मीनान के लिए इसी मुबलक का एक चेक आपको दे देंगे, सर आंखों पर लिख के दे देंगे आपको।
नहीं
चले, मैं एक ब्लैंक चेक आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है?
मैं ऐसे गेमों में नहीं पढ़ना चाहता।
कैसा गेम है मारियान साहब? आप मदद नहीं करेंगे तो आपकी जहमतें भी जाया हो जाएंगी, ना हमको लोन मिलेगा ना आपको कमीशन, समझ रहे हैं ना?
मारियान साहब, लोन का इंतजाम होने के बाद आप फौरन अपना कमीशन ले लें, उसके बाद अगर कोई मसला बना तो उसके जिम्मेदार हम।
सच कह रहे हैं ये, कोई मसला पेश आया तो हम फंसेंगे ना।
मेहमारियान साहब, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वर्कशॉप के लिए ग्राहक मिल गया है, अगर उसने सौदा कर लिया तो कागजात फिर हमें नहीं मिलेंगे।
बिल्कुल ठीक कहा जनाब, आप तो कहते हैं कि 10 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर डर किस बात का?
मैं 10 सालों से लोन लेने का काम कर रहा हूँ, फ्रॉड का नहीं।
अरे जनाब फ्रॉड नहीं है भाई, फ्रॉड नहीं है, कसम से कागजात अपने हैं। अगर प्रॉपर्टी किसी और के होती तो हम कह सकते कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इन्हीं का है, बाकी सारा काम हम पर छोड़ दें। गवाहों और प्रॉपर्टी डीलर का इंतजाम, आप सिर्फ हमसे एक जमानती चेक ले लें और गाहक की हैसियत से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करें, हम आपके इस मदद के बदले कमीशन के अलावा 5 मिलियन एक्स्ट्रा आपको देंगे, ठीक है?
मैं बताता हूँ आपको कुछ सोचकर।
ओहो,
देखिए हमारे लिए ये काम दूसरे अफराद भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपको ये रकम मिले और कोई गैर शख्स बीच में ना आए।
मुझे कम से कम रात तक सोचने का मौका दें।
ये सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल इत्मीनान रखे हैं मेमारियान साहब।
अरे कैसा आदमी है यार ये।
अच्छा चलो आप चेक के बारे में कुछ सोचो।
उसने सोचने की मोहलत मांगी है, शायद इनकार कर दे।
वो राजी हो चुका है, बस जरा अपनी कीमत बढ़ाना चाह रहा है।
देखो मैं तो चेक का इंतजाम नहीं कर सकता, तुम दोनों में से किसी को इंतजाम करना होगा।
क्या है मेरे पास? मेरे पास तो चेकबुक ही नहीं है।
तुम्हारे वालिद के पास तो है।
क्या कह रहे हो, मैं अपने वालिद की चेकबुक से चेक दूंगा?
हाँ।
तुम्हारे वालिद के पास भी तो है, तुम क्यों नहीं देते?
अजीब है, प्रॉपर्टी तो मेहरान की है
तो?
और इनको हम लेकर आए हैं यहाँ
तो?
और तुम्हें भी कुछ हिस्सा लेना चाहिए इसमें या नहीं?
सियावश अकल से काम लो, मैंने अगर अपने वाले साहब की चेकबुक से चेक काट लिया तो कल वो चेक करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा।
कुछ नहीं, सिर्फ एक, वही जो हम मेहमान को देंगे।
देखो तुम चेकबुक के आखिर से भी चेक काट सकते हो, इस तरह उनको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, अगर वो आखिर तक पहुँच गए तो क्या होगा?
कुछ नहीं, उस वक्त तक हमारा काम हो चुका होगा, चेक को फाड़ के कूड़े में फेंक देंगे। तुम्हारे वालिद भी यही सोचेंगे कि चेकबुक पहले ही से नाकिस था, जाके बैग को बताएंगे जब तक काम हो चुका होगा।
दस्तखत का क्या करूंगा, उनके बहुत सख्त दस्तखत है।
ओफो भाई मेमारियान, तुम्हारे वालिद के दस्तखत नहीं जानता, कोई भी दस्तखत करके दे देंगे ना। देखो मोहम्मद रजा, तुम्हें कुछ भी करना होगा ना, तुम्हारा भी तो इसमें हिस्सा है, सिर्फ बैठ के तमाशा देखोगे?
मैं ये काम नहीं करूंगा।
ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम पीछे हट जाओ। मुश्तरका काम में हर फर्द एक फर्ज बनता है, हमने इब्तदा ही से ये तय किया था कि हर आदमी अपना काम करेगा।
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हम चलते हैं।
अरे भाई कहाँ?
यूनिवर्सिटी जाना है, सब्जेक्ट चुनने का आखिरी दिन है।
बहुत बुरा हुआ।
क्या बुरा हुआ, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करता है। कितनी दफा कह चुका हूँ कि मीटिंग में कम से कम ख्याल रखा करो, मोबाइल से खेलते ही रहता है ये लड़का। मैं चेक का इंतजाम करता हूँ।
देखो हमारा मसला सिर्फ चेक नहीं है।
क्या मतलब?
मैं अब बैठ समझता हूँ कि मेहदी चेक पर वर्कशॉप बेचने पर राजी होगा, वो जरूर नकद सौदा करेगा।
अरे भाई इतनी रकम कौन कैश देता है भाई, مہدی کے بھی کیا خیالات ہیں؟
نئے اتفاق سے نقد لینے والا گاہک مل گیا ہے لیکن اصلی قیمت سے 100 ملین کم۔
یہی تو، 100 ملین کم لینا چاہتا ہے، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ پتا ہے بھائی، تم مہدی کو بتانا ہی نہیں کہ ہمارے گاہک چیک کے ذریعے خریدنا چاہتا ہے، تم انہیں ایجنسی لے آؤ، وہیں پہ سب فیصلہ کر لیں گے۔
مجھے تو اپنے آپ سے گھن آنے لگی، ان کے ساتھ ملتا ہوں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، بار بار ان سے جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، بس خدا کرے ان کو پتا نہ چلے۔
ان کو کہاں سے پتا چلے گا، جب لون لے کے ان کو 200 ملین تمہارے ان کے ہاتھ پہ رکھ دو گے اور کہو گے فانی کے پیسے دے دو، ورک شاپ بھی رکھ لو تو کام بھی پہلے سے شروع کرو گے، تو یہ سب باتوں کا ضلع ہو جائے گا۔
سر برتن سمیٹ لوں؟
جلدی کر فرج، زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، سمیٹو اور نکلو۔ چلے گئے؟
جی جناب، ابھی جاتا ہوں۔
پلیز پیغام چھوڑ دیں۔
سحر، تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ ہیں، اگر نہیں چاہتی تو کہو بسم اللہ۔ میں تمہیں کوئی عاشقانہ لیٹر تو نہیں بھیجنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بات واضح ہو جائے۔ خوب کان کھول کر میری بات سن لو سحر، میرے ساتھ کھلواڑ مت کرو ورنہ بری طرح سے ہار جاؤ گی۔
بندر ہے، یہ کیل ہے، یہ ریمبو ہے، یہ دریا ہے، یہ گاڑی ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، یہ بائک ہے۔ ابو یہ ریمبو نہیں، یہ کچھ اور ہے۔
2 whole 1/30 اور 5/90 کیا بنتا ہے؟
کیا؟
کچھ نہیں۔
अब्बू मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, मुझे एक्सलेंट नहीं देंगे।
क्यों नहीं, पेंटिंग करो।
फाउल हो चुका है, अब देखें क्या होता है। अब बॉल मॉड्रिच के पास है, गैरेथ बेल, गैरेथ बेल उधर पास देता है, रोनाल्डो को देखता है, रोनाल्डो रोनाल्डो आगे बढ़ता है, वापस।
चलो बेटा
पास
ले लो।
और पीछे
मैं नहीं खाऊंगा।
मॉड्रिच, रामोस, मॉड्रिच,
ये लो बेटा, किताबों पर गिराना देना। यहाँ से लिखा?
जी वहां से लिखा है।
कुछ हुआ है क्या?
क्या होना था?
बहुत परेशान हो?
देखिए क्या होता है।
घर में बैठी हो, तुम्हें बाहर के मसाइल का क्या पता है?
मर्द अपने बाहर के मसाइल घर नहीं लाता।
मैं नहीं लेकर आया, तुमने खुद पूछा है।
सारा मसला यही है, जब भी घर आते हो तो बात नहीं करते, और जब मैं पूछती हूँ तो परेशान हो जाते हो तुम।
दोबारा शुरू कर दिया। ये लो बेटा, ये क्या है देखो।
अब्बू ये फोन है, ये पेपर है, ये माइक है, ये टीवी है, ये क्लाउड है।
मेहरनूश?
हाँ।
अब्बू कहाँ है?
चहलकदमी करने गए हैं।
हेलो। अच्छा रुको रुको, अभी आता हूँ मैं।
कहाँ गए?
मेहरान या अब्बू?
मेहरान।
उसका फोन बजने लगा, चला गया।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। भान गया।
मैंने तो कहा था ना कि राजी हो जाएगा, साफ जाहिर था पैसों का गुलाम है।
बात यही है, क्योंकि 5 मिलियन की जगह 15 मिलियन चाहिए उसे।
क्या? जाओ उससे कह दो, जरूरत नहीं, किसी और को ढूंढ लेंगे।
किसको ढूंढोगे इस हबड़ दबड़ में?
ये समझ गया हमारा काम फंसा हुआ, इसलिए नाजायज फायदा उठा रहे बेगैर।
यार किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर कोई ब्लैकमेलिंग चाहता है। कसम से जो भी आएगा उसे पैसे देना पड़ेगा मुंह बंद करने के लिए।
जाके सुराग दे दे यार, जब काम खत्म हो जाएगा तो जिसको जो करना है कर ले।
जिससे भी कहेंगे इतनी ही रकम मांगेगा भाई, इस तरह से सिर्फ हमारा काम बढ़ेगा। ये पैसे इस रकम के मुकाबले में कुछ नहीं जो हमें मिलने वाला है, काम करके इजाला कर देंगे। फ़ोन करो, मेहदी से बात करो।
बहुत देर हो चुकी है, कल फ़ोन करता हूँ।
अरे अभी फ़ोन करो, नहीं तो किसी और से बात कर लेगा ना।
अच्छा ये बताओ तुमने सईद को फ़ोन किया?
हाँ सही से सेटिंग हो चुकी है, तुम मेहदी को फ़ोन करके बुला लो।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
तुम्हारे लिए चाय लाई
हूं। शुक्रिया आपका।
जरा फ्रेश हो जाओ तुम लोग।
अरे आपने जहमत की दादी,
तुम्हारे लिए चाय लाई दादी, फ्रेश हो जाओ।
बहुत शुक्रिया
आपका। खुदा थक गई मैं तो। वाह वाह,
बैठ जाइए बैठ जाइए,
सेटिंग की है,
बैठ जाइए। शुक्रिया
क्या बात है।
दादाजान कहाँ हैं?
टैबलेट लेके सो गए हैं।
टैबलेट किस चीज की?
पिछले कई सालों से डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं।
ताज्जुब है, नहीं मालूम था।
ये हल्की वाली मुझे दे दो।
ये
बहुत शुक्रिया। बहू आओ चाय पी लो।
कौन है?
मेहरान है। बहुत शुक्रिया दादी,
इधर बैठो, आ जाओ चाय पी लो। ये लो।
अलैकुम सलाम, कैसे हो?
पी के फ्रेश हो जाओ।
नहीं नहीं जा सका, घर में मसरूफ रहा।
मेहदी भाई वर्कशॉप के लिए उसी कीमत पर जो आप चाहते थे एक अच्छा ग्राहक मिल गया है।
कौन है?
मेमारियान से आवश का जानने वाला है।
मेहरान कहीं दोबारा फानी की तरह हमें फंसा ना दे।
नहीं भाई, सियावश कहता है कि अच्छा इंसान है,
रियायत भी नहीं मांग रहा, जिस कीमत पर फानी ने लिया था उसी कीमत पर। हाँ
ठीक है, तो शुक्रिया की एजेंसी में उसे बुलाओ।
उसके साथ तय किया है लेकिन किसी और एजेंसी में।
कहाँ?
उसने सियावश से कहा है कि मुझे सिर्फ इस एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है।
अरे क्या फर्क पड़ता है, ये गाहक तो शुक्रिया ने नहीं
ढूंढा है ना, उस एजेंसी में जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना।
ठीक है, कितने बजे तय किया?
कल सुबह 10 बजे। कागजात लेकिन जरूर साथ लाएं।
कागजात किस लिए?
पहले हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं।
बात करने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ना वो राजी है उसी कीमत पर मांग रहे हैं। जब तक वो तैयार है हमें सौदा कर लेना चाहिए।
ठीक है, एड्रेस SMS कर दो मुझे।
ठीक है, सबको सलाम कहिएगा।
ठीक, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। बत्तीसी बंद करो अपनी।